ओम शांति। योगी जीवन का आधार आत्म अभिमानी स्थिति। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है योगी भाव का वरदान बाबा से प्राप्त करना। तो ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करना। हम बाबा के पास आए हैं अपने चरित्र के भवन का निर्माण करने के लिए। 21 मंजिल का अपने ही चरित्र का भवन का निर्माण करने के लिए आए हैं। इतनी ऊंची और सुंदर बिल्डिंग बनाने आए हैं और उसका फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करना। अगर फाउंडेशन पक्का होता है तो हमारे कैरेक्टर की बिल्डिंग बहुत सुंदर बनती है और कैरेक्टर की बिल्डिंग जो है उसका फाउंडेशन पर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इधर उधर थोड़ा ध्यान हमारा जाता है तो माया दुश्मन उस फाउंडेशन में संशय का बॉम्ब रख देती है और जब वह संशय का बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सारी बिल्डिंग कोलैप्स होती है। तो माया हमेशा स्वयं में संशय लाने का काम करते हैं और बाबा हमेशा स्वयं में फेथ बढ़ाने की सेवा करते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन हमें बहुत पक्का कॉन्क्रीट बनाना जरूरी है। बाबा हर एक मुरली में आत्मा का पाठ दोहराते हैं। कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें आत्मा का पाठ बाबा ने नहीं दोहराया होगा। क्यों, क्या बात है भाई? ये जो आत्मा का अभ्यास का होमवर्क है ये 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का आत्मा में जो देह का भान कूट कूट के भरा पड़ा है उसको हमें हटाना होगा और 21 जन्म नेचुरल आत्मा का भान रहे उसको हमें जुटाना होगा। तो ये 84 जन्मों का होमवर्क है और उसके लिए थोड़ा सा समय बाबा ने दिया है। आप सोचो ये थोड़े से समय में इतना बड़ा होमवर्क करना है तो कितनी मेहनत उस पर हमें करनी होगी। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? हम बाबा के पास आए हैं मैं कौन हूं इस पहेली का हल पाने के लिए आए हैं। और जिन आत्माओं को मैं कौन हूं इस पहेली का हल मिल चुका है वो ब्राह्मण जीवन का आनंद ले रहे हैं और जिनों को इस पहेली का हल नहीं मिला है वो हल चलाने जैसी मेहनत करते ही रहते हैं और सदा हलचल में आते ही रहते हैं। तो आत्मा मैं कौन हूं, इस पहले का हल पाने के लिए आत्मा का बहुत विधि पूर्वक अभ्यास करना जरूरी है। हम सभी इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मनुष्य से देवता बनने की डिग्री लेने के लिए। दुनिया में अगर बड़ी डिग्री लेनी होती है तो सबसे पहले 3-4 अक्षर लिखना सीखना होता है, ABCD। अगर ए हमें नहीं लिखना आता होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसी डिग्री हमें मिलेगी। तो इस यूनिवर्सिटी में भी ये 4 अक्षर अगर लिखने आते हैं तो हम अच्छी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ए लिखना अर्थात आत्मा समझना आना, बी लिखना अर्थात बाबा को यथार्थ रीति से समझना, सी अर्थात चक्र को यथार्थ रीति से जानना, और ड्री अर्थात ड्रामा के राज को जानना। तो ए अर्थात आत्मा को समझना अगर हमें आता है तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा के पास हम सभी आए हैं आध्यात्मिकता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिकता जो शब्द है उसमें आत्मिकता शब्द अंतर्निहित है, अर्थात जितना आत्मिकता हमारे जीवन में बढ़ती है उतनी आध्यात्मिकता की शक्ति बढ़ती जाती है। इंग्लिश में उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अर्थात जितना हम स्वयं को स्पिरिट समझते हैं, आत्मा समझते हैं, उतनी स्पिरिचुअलिटी हमारे में बढ़ती जाती है। कहने का भाव यही है, ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं चमक रही हैं, जिन्होंने बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त की है इसका क्या सीक्रेट है, जवाब एक ही मिलेगा। जवाब ये मिलेगा कि बाबा के पास आने के बाद हमने ये पहला जो पाठ आत्मा का है उसको बहुत रट रट के घोट घोट के पक्का किया, तब हमने ऐसी श्रेष्ठ बनाने में स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं, 2-5 साल पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, ये क्या आत्मा आत्मा का पाठ, ये तो नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो पुराना हो गया, पुरानी हो गई हूं। ये सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर मेहनत नहीं करने देता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्थिति लड़खड़ाती रहती है। इसलिए यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है, और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, ये हमें महसूस करना बहुत जरूरी है। हम सभी पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ रूपी गाड़ी बाबा ने दी है, हमें याद की यात्रा में सदा दौड़ाते रहना है। लेकिन जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसको स्टार्ट करना हमें आना होगा जरूरी है। तो पुरुषार्थ की गाड़ी कैसे स्टार्ट करते हैं, जो लौकिक कार जो है, दुनियावी कार है, उसको स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं, बैटरी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, बोलो। हाँ जी, याद की यात्रा में हमेशा उसको दौड़ाते रहना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार समझना होगा। स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार नहीं समझते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। दुनिया में स्टार किसको कहते हैं? दुनिया में शारीरिक सुंदरता के आधार पर जो थोड़ी सी छोटी सी फिल्म होती है उसके जो अभिनेता अभिनेत्रियां बनती है उनको स्टार कहते हैं। वो 2-3 घंटे के फिल्म के स्टार होते हैं, 100-200 करोड़ रुपया कमाते हैं। अरे हम कौन है भाई? हम वो छोटे स्टार नहीं हैं। इस बेहद ड्रामा के सुपरस्टार है। ताली तो बजाओ भाई। हम सभी इस बेहद ड्रामा के सुपरस्टार हैं और बाबा सुप्रीम स्टार हैं। हम केवल एक्टर नहीं हैं, हीरो एक्टर हैं। इसलिए जैसे हम स्वयं को सुपरस्टार समझते हैं, ये प्रसाद रूपी गाड़ी स्टार्ट होती है। अभी आत्मा का अभ्यास हम करना चाहते हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक जब हम करते हैं तो सिद्धियां अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा की विशेषताएं हमें अच्छी तरह से अनुभव होने लगती है। अभी विधि कौन सी है आत्मा के अनुभव करने की? विधि बड़ी सरल है। सबसे पहले आत्मा को देखना होगा। जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। अब खुद को कैसे देखेंगे भाई? आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे? इस चेहरे को हम अपने स्थूल आंखों से आईने में देखते हैं। तो ऐसे आत्मा को देखने के लिए आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं। वो आत्मा की आंख कौन सी है? बाबा ने हमें जन्मदिन की वो सौगात दी है, बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान का नेत्र, दिव्य चक्षु, हमें बर्थडे की गिफ्ट दी है। ये लो तुम्हारी बर्थडे की गिफ्ट, दिव्य चक्षु हमें दिया। तो बुद्धि रूपी नेत्र से हमें भ्रुकुटी के बीच में देखना है कि मैं कौन हूं। मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये आसमान के तारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये सितारा देखने के लिए विशेष बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र चाहिए। इसलिए अजीब सितारा है। और गजब का सितारा क्यों है? इस छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है, कभी भी मिटता नहीं है। इसलिए ये गजब का सितारा है। तो बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में देखना है कि मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। अब कैसा सितारा हूं? तो आत्मा के जो 7 निजी गुण हैं, सुख शांति, प्रेम पवित्रता, ज्ञान आनंद और शक्ति, ये आत्मा के निजी गुण हैं। और दिव्य गुण जो है वो आत्मा का श्रृंगार है। सतयुग त्रेता युग में हमारे पास वो श्रृंगार होता है, बाद में रावण उसको चुरा लेता है। तो एकांत में बैठकर हमें ये सात गुणों का एक के बाद एक ऐसा अनुभव करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, परम शांति की अनुभूति हो रही है। इसमें दो बातें हैं, देखने के परसेंटेज को हमें बढ़ाते जाना है, और दूसरी बात उसमें स्थित होने के समय को भी बढ़ाना है। संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात 100% आत्मा का भान, 0% देह का भान होना, और निरंतर उस स्थिति में स्थित होना, इसको कहते हैं संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। तो जैसे जैसे ये आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाता है, निराकारी स्थिति हमारी पक्की होती जाती है, तो निराकारी बाप की याद हमें सहज आने लगती है। जितना आत्मा का अभ्यास सहज निरंतर और नेचुरल होता है, उतनी बाबा की याद सहज निरंतर और नेचुरल अनुभव होती है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अर्थात जब समझते हैं आत्मा, तो पापों का होता है खात्मा। जब क्यों पापों का खात्मा होता है, क्योंकि बाबा की याद हमें सहज आती है। जब अंदर बैठी हुई आत्मा देखते हैं, तो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा हमें दिखाई देता है, उनकी याद हमें सहज आती है। इसलिए हमें स्वयं को देह से न्यारा चमकता हुआ सितारा अनुभव करते जाना है। हमें सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? हाँ जी बोलिए, सबसे जास्ती प्यार हमारा किससे होता है? हाँ जी, बाबा से, अपने देह से। 24 घंटे हमारे साथ अपना देह रहता है, और कोई भी संबंधी नहीं रहता है। कितना भी नजदीक वाला संबंधी है, 2-5 घंटा 8-10 घंटा रहेगा, 24 घंटे हमारे साथ ये देह रहती है। इसलिए देह के साथ हमारा बहुत गहरा लगाव होता है। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना उतना हिसाब है। इस बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बना दिया है, अभी आत्मा का भान करने से हम हीरे तुल्य बनते जाते हैं। इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास को बहुत घोटते रहे। 63 जन्मों की गलत आदत, कितने जन्मों की, एक जन्म की नहीं, एक वर्ष की नहीं, 2500 वर्षों की गलत आदत देह समझने की, उसको हमें परिवर्तन करना है। कितनी मेहनत करनी होगी पूछो अपने से। 24 घंटे देह का भान रहता है, ऐसे 24 घंटे आत्मा का भान रहे, उतनी मेहनत हमें अभी करना है ना भाई। अभी आत्मा का अभ्यास अगर आप करते जाते हैं, तो उसमें आपकी उन्नति हो रही है या नहीं कैसे पता चलेगा भाई? अगर उसको आप जानना चाहते हैं, तो उसकी 5 स्टेप्स हैं। लिखो, जैसे हम बाबा के पास आते हैं, बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में टिको। हम आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते हैं और जैसे जैसे आत्मिक स्मृति हमारी पक्की होती जाती है तो दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, आत्मा के भान में स्थित हो जाना, आत्मा की स्थिति में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना। तो ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो भी हमारे सामने आता है उसका असली स्वरूप, उसका सत्य स्वरूप हमें स्पष्ट नजर आने लगता है, उसको कहते हैं आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि। ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की की थी तो कोई भी सामने आता था तो अंदर छिपी हुई बैठी हुई आत्मा बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। एक्सरे हमें अंदर का जो शरीर का ऑर्गन्स होता है उसका फोटो निकाल कर देता है। तो ऐसे एक्सरे अर्थात शक्तिशाली बाबा की दृष्टि बन चुकी थी, अंदर छिपी हुई आत्मा बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। तो जैसे जैसे हमारी दृष्टि आत्मिक बनती जाती है तो चौथी स्टेज है आत्मिक वृत्ति पक्की होना। वृत्ति अर्थात आदत बन जाना, वृत्ति अर्थात नेचुरल अभ्यास बनते जाना, आत्मा समझकर आत्मा को देखने का अभ्यास नेचुरल होना। तो आत्मिक वृत्ति पक्की होती जाती है तो पांचवी स्टेप है आत्मिक कृति अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित होना। और लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना। जो संस्कार हम अपने साथ लेके जाते हैं, जिसके आधार पर हमें 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान पक्का रहता है। तो हमें अभी पूछना है अपने से, मेरी आत्मिक स्थिति कितनी पक्की हो चुकी है और कितनी मुझे पक्की करनी है, पूछना है अपने से। जितने जितने हम पुराने हो जाते हैं उसकी निशानी है रूहानियत की शक्ति, दिव्यता की शक्ति बढ़ते जाना, रूह समझकर रूह को देखने की शक्ति अर्थात रूहानियत की शक्ति, दिव्य स्वरूप में टिकना और दिव्य स्वरूप को देखना, इसको कहते हैं दिव्यता की शक्ति बढ़ना। तो हमें इस शक्ति को बढ़ाते जाना है। जैसे शिव बाबा को नेचुरल आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि रहती है, ऐसे हमारी भी नेचुरल आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि रहे, इस मंजिल तक हमें पहुंचना है। अभी हम जब आत्मा का अभ्यास करते हैं तो आत्मा का अभ्यास करते करते कभी कभी हमें बोर होने लगता है, क्या बिंदी 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 समझते रहे, कब तक समझेंगे, बोर होता है भाई कभी कभी, सच बोलो। हाँ जी बोलो ना, होता है ना बोर, बोलो होता है ना, जरूर होता है। क्यों होता है उसका सूक्ष्म कारण एक ये है कि मैं आत्मा हूं ये तो मुझे पता है, लेकिन किस प्रकार की मैं आत्मा हूं ये हम भूल जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कहते स्व अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात मैं महान आत्मा, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा। ये स्व और मान दोनों जब साथ में रहते हैं तो ये अभ्यास कभी भी आपको बोर नहीं हो सकता है। हमारी दादियां इतने 80-85 वर्षों से इसका अभ्यास कर रही थी, उनको कभी भी ये अभ्यास बोर नहीं हुआ, क्योंकि वो समान में स्थित होकर इस पाठ को पक्का करते रहे। जानकी दादी जी 74 में पुणे में रहती थी, तो संतो दीदी जी बॉम्बे से वहां ट्रेनिंग लेने के लिए उनके पास गई थी, तो उन्होंने देखा दादी जी सारा कारोबार संभाल के पूरा करके कोने में बैठ जाती थी। तो एक दिन पूछा दीदी ने कि दादी आप कोने में बैठ के घंटों घंटों बैठती करती क्या हैं? तो दादी जी ने जवाब दिया, मैं खुद को कूटती हूँ, आत्मा के पाठ को रटती हूँ, घोटती हूँ। कहने का मतलब है जिन आत्माओं ने आत्मा के पाठ को बहुत पक्का किया वही आज ब्राह्मण संसार में चमक रहे हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हो चुके हैं। ठीक है ना भाई? तो आत्मा के साथ समान का टाइटल हमें जरूर जोड़ना है। सभा में जो भी बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी साधारण आत्मा इस सभा में नहीं है। बाबा ने अपनी असाधारणता को पहचानने के लिए बड़े बड़े सम्मान के टाइटलों से नवाजा है। तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो, आधार मूर्त आत्मा हो, उद्धार मूर्त आत्मा हो, जगदम्बा हो, दुर्गा हो, अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हो, तो आत्मा के साथ हमें ये टाइटल जरूर जोड़ना है। फिर आप देखना ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती रहेगी और आत्मा का अभ्यास भी बहुत नेचुरल बढ़ता जाएगा। हम बाबा के बच्चों ने ये आत्मा का पाठ हर कल्प में बहुत पक्का किया हुआ है। हमने किया है, किसी और ने नहीं किया है। उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलिए कौन सी है? भक्ति मार्ग में है। जब भी आप मंदिरों में जाएंगे देवी देवताओं के, उनके सामने दीपक ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते भाई? पूर्व ये जो पुजारी है उसमें घृत डालता रहता है, अगर ये ज्योति बुझ जाए तो ये देवी देवताओं का श्राप मुझे लग जाएगा, इसलिए नींद भी पिटाता है। तो ये किसकी यादगार है? हम जो देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा का दीपक निरंतर जगाकर रखने का अभ्यास किया था, उसकी वो यादगार अभी तक भी मना रहे हैं। वो तो नींद भी पिटाते हैं और हम मस्ती से नींद लेते रहते हैं, कोई फिक्र नहीं करते। समझा? तो एक बात हमें ध्यान रखना है, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। ये मेरा घर है। माया ने ये आत्मा के दीपक को बुझाया था तो ये बंगला भूतों का बंगला बन गया था, और ये पांच भूत उस आत्मा को बहुत परेशान करने लगे, बहुत दुख दर्द देने लगे। तो बाबा को बड़ी दया आई, ये मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। बाबा ने ऊपर से आकर हमारे घर में आत्मा का दीपक जगा दिया और भूत भाग गए भाई, भूत भाग गए। इसलिए बाबा को भूतेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। जिसके घर में सदा रोशनी रहती है, आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहता है, वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे। और जिनके घर में रोशनी नहीं रहती है, तो रो प्लस शनि अर्थात रुलाने वाला शनि का ग्रह उनके पीछे लगा रहता है। इसलिए मेरे घर में सदा रोशनी रहे, आत्मा का दीपक जलता रहे, दिवाली हर रोज मैं मनाती रहूं, इस मिट्टी के दीपक में आत्मा की ज्योति निरंतर जलती रहे, उसकी रोशनी केवल मुझे ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को बहुत अच्छी तरह से उसकी रोशनी मिलती रहे। इसको हमें पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं, आप युद्ध के मैदान में हो और माया आपके साथ बॉक्सिंग सदा करती रहती है। अब उस बॉक्सिंग में जीतना है या हारना है पहले बताओ भाई। जीतने वालों की निशानी क्या और हारने वालों की निशानी क्या, बोलिए बोलिए ना, फटाफट बोलिए। जीतने वालों की निशानी है उनके चेहरे पर खुशी और नशा होता है, और हारने वालों की निशानी है चेहरा बूझा बूझा उदास निराश रहता है। जो क्रिकेट की मैच जीतती है वो सारे क्रिकेटर ग्राउंड पर उछलते हैं, और जो हारते हैं वो अपना चेहरा छिपा लेते हैं, मीडिया हमारा फोटो न ले। तो बॉक्सिंग में जीतना या हारना है बोलिए। तो जीतना है तो माया से कैसे बॉक्सिंग होती है इस राज को हमें जानना होगा। कैसे बॉक्सिंग होती है बताइए, कैसे बॉक्सिंग होगी ये अगर पता होगा तो उसमें जीतेंगे आप। हैं जी बताऊं, बोलो बॉक्सिंग कैसे होती बताओ, क्या बोलते ही नहीं है बताओ भाई। देखो जब स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं, हैं आत्मा रूपी हीरा, तो जब देह रूपी बॉक्स समझते हैं तो ये माया की प्रॉपर्टी है, पांच तत्व और पांच विकारों की। माया आती है और एक गुस्सा हमें मारती है और नीचे गिराती है, और पांचों खिलाड़ियों को कहती है आओ इसको पीटो अच्छी तरह से, मालिश करो इसको, पीटो खूब अच्छी तरह से। ये मेरा कस्टमर था, पता नहीं कहां वो ब्रह्मा कुमारी के दुकान पर जाता है, पिटाई करो इसको। 2500 साल तक मेरा कस्टमर था और पता नहीं कौन से दुकान पर जाता है, पीटो इसको। पांचों डाकू आते हैं, बाल पकड़ते, नाक पकड़ते, छाती पर बैठते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बाबा ऊपर से देखता है, ये मेरे लाल का क्या हाल हुआ भाई, क्या हाल हुआ है, बेहोश पड़ा है, बेहोश पड़ा है। तो दया का सागर बाबा माउंट आबू पर पहाड़ों पर आता है, और वहां से हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी आपके सेंटर पर भेजता है, और दीदी को बोलता है भाई संजीवनी बूटी इस बच्ची को सुंगा दो, जरा होश में आए भाई। भाई मैं तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, कोई मैं आत्मा नहीं हूं। बहुत दूसरे दिन संजीवनी बूटी आती है, मुरली भाई मैं सदा सत्य बोलने वाला तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्मा हो। अच्छा मैं आत्मा हूं, अच्छा थोड़ा होश आता है, अरे तुम महान आत्मा हो, मैं महान आत्मा, अरे सर्वशक्तिवान के संतान हो। जब ऐसी स्थिति में हम स्थित रहते हैं तो माया दुश्मन हमारे पर देखती है हमारे तरफ, अभी इस पर वार करेगी तो मेरी दाल अभी नहीं गल सकती है। कहते टाटा मैं जा रही हूं, 2500 साल के बाद फिर मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी। भाई अभी तो तुम जा, अभी तो मेरा पीछा छोड़। तो ये रूहानी मिलिट्री है। इस रूहानी मिलिट्री का पहला मार्शल लॉ है, अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो प्लीज, कि कौन हो मैं, महान आत्मा हूं। इस अटेंशन में रहते हैं तो माया दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकती है, और जो वार माया से हमारा होता है उसमें जो जीतते हैं उनको वीरों में वीर महावीर कहते हैं। ये महावीरों की महावीरनियों की सभा बैठी है, सारे महान आत्माएं इस आत्मा में, विजयी आत्मा बैठे हैं। हम माया को हार खाने वाले नहीं, माया को हार पहनाने वाले हैं। वो हमें क्या हराएगी? माया ने हमें 2500 साल तक गुलाम बनाकर रखा था, भगवान ने हमें आजादी दी है। आजादी माना इस देह रूपी पिंजड़े में मैं आत्मा रूपी पंछी जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं उड़कर बाबा के पास, इसको कहते हैं आ जा दी। तो हम सारे आजाद पंछी हैं, हमें भगवान ने आजादी दी है, इसलिए हमें माया के पिंजड़े का पंछी नहीं बनना है, स्वतंत्र पंछी बनकर हमें रहना है और एकदम नशे में मस्त रहना है। क्योंकि हम देखते हैं ये दुश्मन का राज है, हमारा राज नहीं है। हमारा राज सतयुग त्रेतायुग में होगा। दुश्मन क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देते हैं तो दुश्मन हमारे पर वार करती है। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। काया ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, माया की प्रॉपर्टी है। और जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है, आत्मा का ज्ञान आत्मा का पहचान भगवान ने दिए, ईश्वर ने दिए हैं। तो जब उसमें स्थित होते ही तो ईश्वर की याद आती है, और जब काया समझते हैं तो माया हमारे पास आती है। तो हमें काया के भान से सदा दूर रहना है। हम बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास किया हुआ है, इसकी यादगार बहुत अच्छी शास्त्रों में है। बोलिए कौन सी है यादगार बहुत अच्छी है? पांडव जो हैं, पांच ही पांडव थे, पहाड़ों पर चढ़ते गए उन्हों के साथ कुत्ता दिखाया था। पांडव के साथ कुत्ता ही दिखाते, और कुछ दिखाते नहीं। कुत्ता क्यों दिखाते भाई? कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता रहता है, हमेशा वो उसकी निशानी है। तो जैसे जैसे पांडव पहाड़ों पर चढ़ते गए कुत्ता गायब हो गया। फिर बाद में धीरे 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 पांडव गलते गए पता नहीं कहां गायब हो गए। तो ये हमारी यादगार हैं। हम जो प्रीत बुद्धि आत्माएं पांडव हैं, जब ऊंचे पहाड़ों पर हम जाते हैं, ऊंची स्थिति हम मनाते हैं, तो आत्मा की पूंछ ये देह गायब हो जाती हैं। और जैसे जैसे ऊंचे उठते हैं, आत्मा में जो भी इम्प्यूरिटी है वो गलती जाती है मिटती जाती है। और बाद में पांडव गायब हो गए, माना परम धाम में बाबा के पास बैठ गए। ये हमारी यादगार है, ये हमारी यादगार है बाबा के बच्चों की। जब लंका को जलाने के लिए हनुमान को भेजा, कैसे लंका उसने जलाई? पहले क्या किया उसने? पहले अपने पूंछ को जला दी, आंख लगा दी, और सारे लंका पर घूमता रहा तो सारी लंका को आग लगा के भस्म कर दिया। तो ये हमारी यादगार हैं हनुमान। हम जो महावीर हैं बाबा के, इसमें मिलिट्री में भर्ती हुए हैं, तो आत्मा की पूंछ देहाभिमान योग की अग्नि में हम जलाते हैं। तो ये रावण की लंका, पुरानी दुनिया की जो लंका है उसको हम जलाते हैं, ऑटोमेटिक इसका विनाश होता है। ये हमारी यादगार हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? अपने देह रूपी पूंछ को जलाना होगा, गलाना होगा, मिटाना होगा। इसलिए मैं देह हूँ, आत्मा हूँ, ये देह नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ। विभिन्न प्रकार के ड्रिल सारे दिन भर में हम करते रहे। मैं सीप नहीं हूँ, मैं मोती हूँ। ये देह रूपी शोकेस नहीं हूँ, लेकिन इस शोकेस में स्थित शोपीस हूँ। इस शरीर रूपी रथ पर मैं आत्मा रथी विराजमान हूँ और ब्रेन के माध्यम के द्वारा इस रथ को चला रही हूँ। इस देह रूपी कार का मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ। जो आपको अच्छा लगता है, इस देह रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी विराजमान हूँ। तो जो भी आपको अच्छी लगती है ड्रिल, उसका आपने अभ्यास करते रहना है और देह के भान को मिटाते रहना है और आत्मा के भान को बहुत पक्का करते जाना है। क्योंकि जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। जितनी आत्मा के अभ्यास की गहराई बढ़ती है उतनी बाबा की याद की भी गहराई ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। इसलिए इस अभ्यास को हर रोज ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। आत्मा के अभ्यास की मालिश पॉलिश बाबा अंतिम दिन तक करते रहे। इसलिए बाबा से मिलने के लिए झोपड़ी में कोई जाता था और जब बाबा दृष्टि देते थे तो बाबा की आत्म अभिमानी स्थिति इतनी प्रखर बन गई थी, तो जो शांति के प्रवाह में जैसे वो आत्मा बह जाती थी, शक्ति के प्रवाह में वो आत्मा बह जाती थी, इतनी प्रखर आत्म अनुभूति बाबा ने बढ़ाई थी। इसलिए हमें भी बाबा को फॉलो करना है। तो ये आत्मा का पाठ अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारा अंतिम पेपर कौन सा होगा? हमने अंतिम पेपर में फुल पास होना है। अंतिम पेपर है एक सेकंड में देह से न्यारा होना। सिचुएशन कैसी भी हो, ये देह पानी में डूब जाए, आग में जल जाए, धरती में दब जाए, कैसी भी परिस्थिति में हो, एक सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, ये हमारा अंतिम पेपर है और उस पेपर में हमने पास होना है। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम पेपर में फुल मार्क्स लिए हैं। जिस समय बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय तीन फोर्सेस बाबा की आत्मा पर काम कर रहे थे। एक जो हार्ट में तकलीफ थी, शरीर में जो तकलीफ थी वो अपनी तरफ खींचती रही। दूसरा फोर्स जो बाबा ने बगीचा सिंचाया इतने वर्षों से, वो बच्चों का स्नेह बाबा को खींचता था। और तीसरा फोर्स शिव बाबा उनको परम धाम की ओर खींचता था। तो बाबा ने साधना के द्वारा देह की जो तकलीफ थी उससे भी बाबा डिटैच हो गए। जो बच्चों के साथ मोह था, प्यार था, उससे भी डिटैच हो गए और एक सेकंड में शिव बाबा की याद में खो गए और अंतिम पेपर में 100 मार्क्स लिए हैं। ऐसे हमें भी लेना है, हमें भी लेना है ना भाई। बाप जैसा बेटा होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है, तो ऐसे सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, हमने भी ऐसी शक्तिशाली स्थिति को बनाना है कि नहीं। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर आत्मा की अनुभूति और परमात्म अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम अलौकिक मस्ती में मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य रथ पर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी भ्रुकुटि के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा रथी इस शरीर रूपी चैतन्य रथ को चलाती हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य रथी पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता की सूक्ष्म तरंगे मुझ आत्मारथी से चारों फैल रही है। मुझ आत्मारथी के चारों पवित्रता का सुंदर ताज अनुभव हो रहा है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं महान आत्मा रथी हूँ, महारथी हूँ। जो भी मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है उन पर शासन करने वाला महारथी हूँ, महान रथी हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी इस देह रूपी चैतन्य रथ से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इन पांच तत्वों से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार, मैं आत्मारथी उड़ता हुआ जा रहा हूं। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गया हूं, जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोज निराकार आत्मा रति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की काया रथ धारण किया है। कितना हल्का फुल्का ये दिव्य प्रकाश पुंज का रथ है। ओ फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है, मेरे समक्ष विराजमान है। अति प्यारे शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर रूपी रथ पर सवार है। बाप दादा मोज फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। इस दिव्य प्रकाश पुंज के रथ को छोड़कर मैं निराकार आत्मा रथी पुष्पक विमान में बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच चुका हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। ओह कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, मेरा स्वीट साइलेंस हो। ओह मेरे प्राणों से भी प्यारे, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल मोज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य चक्षु से निराकारी बाप को देख रहे हो, उनकी सुंदर छवि को निहार रहे हो। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही। और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्मा ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इस निराकारी बेहद दुनिया में मैं निराकारी आत्मा अपने निराकारी शिव पिता के साथ महामिलन मंगल मिलन का आनंद ले रही हूँ। बाबा मैंने बहुत कुछ पा लिया, बाबा आपसे अथाह खजाने पाए लिए, बाबा मेरी एक छोटी सी आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की अखंड ज्योत जलती रहे बाबा। आत्मा की ज्योत में आपके प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे, और मैं आत्मा सच्ची योगी बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। बाबा आपके ही संग में आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, उनके सुखद कंपनी में मैं आत्मा परम सुख की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन उड़ती हुई आ रही, और मैं निराकारी आत्मा रथी इस शरीर रूपी चैतन्य रथ पर सवार हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्मा रथी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति।